मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
इस घड़ी में कार्यक्रम महिमा के वचन सुनने के लिए फिर से आपका स्वागत है। आइए इस गीत से प्रभु की प्रशंसा करते हुए हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करें।
Thank you.
श्रोता, आए दिन हम लोग इस प्रकार की खबर सुनते रहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कुछ नई खोज में सफलता पाई है। उन्होंने किसी विशाल जीव का जीवाश्म ढूंढ निकाला है जो अब संसार में नहीं है इत्यादि। यहाँ तक कि वैज्ञानिक पिछले युग की वनस्पतियों का भी अध्ययन करते हैं और इसे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के विषय बताना चाहूँगी जिन्होंने उस समय इस विषय पर अध्ययन किया जब यह भारत के लिए एक नया विज्ञान था। उस समय ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं थे जिससे चट्टानों को काटा या पीसा जा सके और उनमें अंकित लुप्त या छिपे हुए वनस्पति जीवाश्मों का अध्ययन किया जा सके। प्रोफेसर बीरबल साहनी नाम के वैज्ञानिक सन 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। पहले तो उन्होंने वनस्पति विज्ञान विभाग में पढ़ाने का स्तर ऊंचा किया, यहाँ तक कि वे अपने ही पैसों से नए उपकरण खरीदते थे। वास्तव में वे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को समर्पित एक संस्थान का निर्माण करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने भूविज्ञान विभाग की स्थापना की। उनके सपनों की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना उसके बाद हुई, जो दुनिया में अपने तरह की पहली संस्था थी। आज यह संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के नाम से प्रसिद्ध है। साहनी जी का जन्म 14 नवंबर सन 1891 में पंजाब के भेरा नामक नगर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता रसायन विज्ञान के अध्यापक थे जिन्हें प्रकृति अध्ययन में बहुत दिलचस्पी थी। गर्मी की छुट्टियों में पिता अपने पुत्र को पहाड़ों में घुमाने ले जाते थे। वे साथ साथ चट्टानों के टुकड़े, पौधे और जीवाश्म वाली चट्टानें इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे युवा साहिनी वनस्पति और भूविज्ञान में रुचि लेने लगे और उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध इन्हें अपनी जीविका का साधन भी बना लिया, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वे इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश लें। सन 1911 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से बीए पास कर वे ब्रिटेन चले गए। सन 1919 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक एससी स्टुअर्ट के निर्देशन में फर्न्स, कॉनिफर्स और जीवाश्म पौधों पर शोध कार्य किया। दरअसल जीवाश्म वनस्पति विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान दोनों का ज्ञान आवश्यक है और इसके लिए साहसी स्वभाव और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ताकि जीवाश्म वनस्पति वाली चट्टानों की खोज के लिए पहाड़ों पर लंबी पैदल यात्रा पर जाया जा सके और फिर जब चट्टानें एकत्र करके पीस ली जाएं तब जीवाश्म में उपस्थित तथ्यों से यह पता लगाना कि लुप्त पौधा कैसा था, यह जासूस के जैसे योग्यता की मांग करता है और साहनी जी में यह गुण बचपन से ही आ गया था। वे प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंडियन गोंडवाना के पेड़ पौधों का विस्तार से अध्ययन किया। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों की खोजबीन की। यह स्थान प्राचीन वनस्पतियों के जीवाश्मों का खजाना है। वहां उन्होंने पौधों के कुछ नए जीन्स की खोज की। इनमें से महत्वपूर्ण हैं होमोजाइलोन, राजमहलींस, राजमहालिया, पाराडोरा और विलियम सोनिया सिवार डायना। उनके कुछ आविष्कारों ने प्राचीन पौधों और आधुनिक पौधों के बीच विकास क्रम के संबंध को समझने में सहायता की है। उन्होंने एक नए समूह के जीवाश्म पौधों की खोज की। ये जिम्नोस्पर्म्स हैं चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़ जिन्हें पेंटोजाइलीज कहते हैं। उनके पुरा वनस्पति विज्ञान के अध्ययन ने महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने के सिद्धांत को भी बल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार यह पता चला कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर सदा उस तरह खिसकते रहे हैं जैसे कोई नाव नदी के जल सतह पर खिसकती है। जैसा कि साहनी जी एक भूविज्ञानी भी थे, उन्होंने अपरिष्कृत उपकरणों और प्राचीन पौधों के अपने अथाह ज्ञान के द्वारा कुछ पुरानी चट्टानों की उम्र का अनुमान लगाया। इसके अतिरिक्त बीरबल साहनी को पुरातत्व विज्ञान में भी दिलचस्पी थी। उनकी एक खोज यात्रा में उन्हें सन 1936 में रोहतक में सिक्के बनाने के सांचे मिले थे। वे चित्रकला और क्ले मॉडलिंग में भी बहुत दक्ष थे। उनके पास डाक टिकटों और सिक्कों का भी बहुत बड़ा संग्रह था। आज हमें भी ऐसे महाविदों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
चलता है। प्रिय मित्र, बाइबल हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करता है तो परमेश्वर उसे आत्मिक आँखें प्रदान करता है। वह जैसे जैसे आत्मिकता के मार्ग में बढ़ता है उसकी मन की आँखें ज्योतिर्मय होती जाती हैं, जिनसे वह अपनी बुलाहट की आशा और पवित्र लोगों में अपने उत्तराधिकार की महिमा के धन को जानने लगता है। जैसे जैसे वह परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आगे बढ़ता है वह परमेश्वर के अलौकिक प्रकाशनों को जानने और समझने लगता है। वह परमेश्वर से प्रेम करने लगता है, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना उसे अच्छा लगने लगता है। इस तरह वह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है। परमेश्वर के एक दास ने, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले संदेश में सुना था, जिसने कहा था परमेश्वर से प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना रेल की दो पटरियों के समान है, जिनके सहारे चलकर रेलगाड़ी की तरह हम पवित्रता का जीवन और स्वर्ग के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन और बाइबल अध्ययन जैसी महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए भजन संहिता अध्याय 119 में और उसके 18वें पद में भजनकार कहता है, मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। इस पद में तीन महत्वपूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले वह कहता है परमेश्वर के वचन में अद्भुत बातें हैं। इसमें हमारे लिए नियम, आज्ञाएं, आशीषों की प्रतिज्ञाएं, शिक्षाएं, चेतावनियां हैं। सचमुच ये इतनी अद्भुत हैं कि जब हम इसे पढ़ते और इनमें दी गई बातों के अनुसार चलते हैं तो यह हमारे जीवन को बदल देता है। यह हमें पवित्रता का जीवन जीने एवं परमेश्वर की सेवकाई करने में हमारी सहायता करता है। इस कारण बाइबल पढ़ना और उसका अध्ययन करना, मनन करना और स्मरण करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, बिना परमेश्वर के अलौकिक प्रकाशन और सहायता के कोई भी व्यक्ति इन अद्भुत बातों को नहीं देख सकता। यदि परमेश्वर हमारी आँखों को ना खोले तो हम उसकी अद्भुत बातों को नहीं देख सकते। हमारे अंदर यह योग्यता नहीं है कि हम आत्मिक सुंदरता को देख सकें। यदि हम बिना परमेश्वर की सहायता के बाइबल को पढ़ें तो इसमें दिए गए परमेश्वर के कार्यों और उसकी शिक्षाओं में परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को नहीं देख पाएंगे, जो सूर्य के प्रकाश की तरह पाप में अंधे व्यक्ति के चेहरे पर चमकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसके मूल अर्थ को नहीं जानते। हम अवश्य जानते हैं, मगर हम अपनी सीमित बुद्धि से इसकी सुंदरता और महिमा को नहीं देख सकते, जो हमारे हृदय को छुए और हमें प्रभु यीशु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता जाए। तीसरी बात है, परमेश्वर के अलौकिक प्रकाशन और सहायता के लिए हमें भजनकार की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। वह प्रार्थना इस प्रकार होगी, मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूँ। इसलिए कि हम आत्मिक रूप से निर्बल एवं असहाय हैं, हमारी एक सीमा है। हम परमेश्वर के वचन की अद्भुत सुंदरता और अलौकिक बातों को देखने के लिए सक्षम नहीं हैं। अतः हमें बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर मेरी आँखों को खोल दीजिए। आइए अब हम तीसरी बात पर विचार करें जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, कान ने नहीं सुना। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर हमें सुनने के लिए नए आत्मिक कान प्रदान करता है, जिनसे हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज़ को सांसारिक कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे कानों को ट्यून करता है ताकि हम परमेश्वर की धीमी और मधुर आवाज़ को सुन सकें। प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की सी जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वह मुझे जगाता और मेरे कानों को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और ना तो मैं अनाज्ञाकारी हुआ और ना ही पीछे हटा। ऐसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 50 पद 4-5 में लिखा है। यिर्मयाह अध्याय 29 11-13 पद में बाइबल कहती है, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं। तब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने महान योजनाओं को पूरा करना चाहता है, जीने के नए तरीके प्रदान करना चाहता है, जिनकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की है, जो हमने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो हमारी मानवीय समझ से बिल्कुल बाहर की है, जो हमारे लिए असंभव प्रतीत होंगे, जिन्हें सुनकर और जानकर शायद हम आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि यह एक नया मार्ग होगा। प्रत्येक विश्वासी को प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज़ सुनना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल बताती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, रोमियो अध्याय 10:17। प्रभु यीशु ने भी कहा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, मत्ती अध्याय 4:4। विश्वासी जन को विश्वास में बढ़ने और आत्मिक रूप से जीवित रहने या उसमें दृढ़ता से बने रहने के लिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना अत्यंत आवश्यक है। यह बहुत ही आसान है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें, ताकि उसकी आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चलने और आज्ञा पालन के द्वारा हमारे जीवन में आश्चर्यकर्म हो। यदि हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलें या उसे अनसुनी कर दें, तो हम उस आश्चर्यकर्म को प्राप्त करने से चूक जाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। हम हर दिन उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ज़रा विचार करें कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप कैसे शुरू करते हैं? क्या आप उस व्यक्ति से आमने सामने खड़े होकर बातें करते हैं? आप बोलते हैं, सामने वाला सुनता है। जब सामने वाला बोलता है तो आप सुनते हैं। यही बात परमेश्वर से बातचीत करने के लिए भी करना पड़ता है। यह उस समय संभव हो सकता है जब हम स्वयं को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करते हैं। प्रार्थना करते समय कहें, प्यारे परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी सहायता करें कि मैं आपकी धीमी और मीठी आवाज़ को सुन सकूं। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरा सब कुछ आपके सामने खुली किताब के समान है। मैं आपको और अधिक गहराई से जानना चाहता हूँ। क्या आज आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? क्या आप मुझ पर अपनी इच्छाओं और योजनाओं को प्रकट करेंगे, ताकि मैं उन्हें आपकी सहायता से पूरी कर सकूं? यूहन्ना अध्याय 10:27 में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आइए हम इस सामर्थी वचन को ध्यान से देखें कि इसमें परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रतिज्ञाएं करता है। पहली बात है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। वह कहता है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। भजन संहिता अध्याय 34:6-15 में इस प्रकार वर्णन किया गया है, इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे उसके सारे संकटों से छुड़ा लिया। यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। भजन संहिता अध्याय 17:6 में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, मैंने तुझे पुकारा क्योंकि तू मुझे उद्धार देगा, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन। दूसरी बात है, प्रकाशन और दर्शन के द्वारा भेद की बातें बताने वाला परमेश्वर। वह कहता है, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊँगा जिन्हें तू नहीं समझता। यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुझे प्रकाशन देना चाहता हूँ, मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रहस्य और भेद की बातें बताना चाहता हूँ जिनको तुम नहीं जानते, जिनको संसार के लोग नहीं जानते, क्योंकि वे पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते और न उसे ग्रहण करते हैं। परमेश्वर परिस्थितियों के माध्यम से, अन्य विश्वासियों के माध्यम से, मन में प्रकाशन द्वारा अथवा विचारों को देने के द्वारा, आश्चर्यकर्म के द्वारा, स्वप्न दर्शनों के द्वारा, धीमी और मधुर आवाज़ के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। यदि आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर यिर्मयाह अध्याय 33 पद 3 के अनुसार आपके जीवन में आश्चर्यकर्म करेगा और अपनी आवाज़ आपको सुनने की शक्ति प्रदान करेगा।
प्रिय श्रोता, क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के संदेश ने आपके हृदय में काम किया है? तो अपना अनुभव हमें अवश्य लिख भेजें। संपर्क के लिए पता नोट कर लें। महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 09835983759। नंबर फिर से मिला लें, 09835983759। कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सोनाली को अनुमति दीजिए। नमस्कार।